Namaskar and welcome to yet another edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today being Saturday, we shall also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But please do remember that we do not address stock or company specific queries. Well, you may call us on the numbers 2331-4444. 2342-1050 and 2331-0464. If you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Harsh Ranjan.
नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेंगे, साथ ही नजर डालेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर। बात करेंगे आरबीआई ने जो ब्याज दरों में कटौती की है, इसका क्या असर पड़ सकता है हमारी वित्तीय व्यवस्था पर, हमारे शेयर मार्केट पर। क्या कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने क्या कहा, सभी चीजों पर हम विस्तार पूर्वक अपने एक्सपर्ट के साथ चर्चा करेंगे। आप चाहें तो अपने कोई भी सवाल जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं जरूर पूछें। तीन टेलीफोन नंबर्स हमने आपके लिए खोले हुए हैं। नंबर्स हैं 2331-44-44, 2342-1050 और 2310-464। तीनों नंबर में से किसी भी नंबर पर फोन करें, अपने सवाल हमसे पूछें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ खास तौर पर बिजनेस जर्नलिस्ट शिशिर सिन्हा उपलब्ध हैं। शिशिर, बहुत बहुत स्वागत आपका।
जी नमस्कार, धन्यवाद।
एंड नाउ लेट्स बिगिन टुडेज एडिशन विद द हेडलाइंस इन इंग्लिश।
Right, let's get started. Well, benchmark domestic indices decline amid cautious sentiment last week following the RBI monetary policy. The Defence Ministry signs a contract with Bharat Electronics Limited for procurement of 28 EON 51 systems for Indian Navy. And Brent crude prices settle at $74.66 a barrel, up 0.5% last week.
इस सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों में मामूली गिरावट। सेंसेक्स 198 अंक गिरकर 77,860 तो निफ्टी 23,560 पर रहा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 642 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 28 यौन 51 सिस्टम खरीदने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ किया करार। और ब्रेंट क्रूड की कीमतों में बढ़त, प्रति बैरल $74.66 पर पहुंचा। कॉलर्स को आमंत्रित करें, हमारे साथ कॉलर्स जुड़ गए हैं। राज, उनसे गुजारिश कि थोड़ा सा इंतजार कर लें, क्योंकि हम पहले बता दें कि इस सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों में मामूली गिरावट रही। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती के मद्देनजर निवेशकों ने बाजार में बेहद सावधानी पूर्वक कारोबार किया, कॉशियसली जिसे हम बाजार की भाषा में कहते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स पूरे सप्ताह के दौरान 198 अंक गिरा और 77,860 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी मामूली 0.18% गिरा और 23,560 पर रहा। हालांकि विस्तारित बाजारों में थोड़ी सी बढ़ोतरी रही, बेहद मामूली। सेंसेक्स समूह के 30 शेयरों में 16 शेयर टूटे हैं। सबसे अधिक गिरावट वाले जो शेयर हैं उनमें आईटीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अडानी पोर्ट के शेयर रहे, जबकि सबसे ज्यादा तेजी टाटा स्टील के शेयरों में रही। शिशिर, आपसे एक त्वरित उत्तर कि मार्केट जो गिरा है, वैसे भी गिर रहा था, वोलाटाइल था, लेकिन ब्याज दरों में कटौती का कितना असर पड़ा है?
देखिए, ब्याज दरों में कटौती का अभी बहुत ज्यादा असर बाजार में नहीं दिखा है, क्योंकि जो बाकी परिस्थितियां हैं वो बाजार के अनुकूल अभी नहीं है। तो इस वजह से आपने देखा कि जब चौथाई फीसदी की कटौती 5 साल के बाद की गई है, उसके बावजूद बाजार में तेजी नहीं आई। आमतौर पर यह समझा जाता है
जी
कि ब्याज दर का घटना शेयर बाजार में तेजी का संकेत है।
बिल्कुल, और ऐसा अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि बैंक जब ब्याज दरों में कटौती करते हैं तो लोग अपने पैसे बैंकों में नहीं लगाकर शेयर बाजारों में लगाना चाहते हैं ताकि उनका रिटर्न वहां से कुछ मिले। तो ब्याज दरों का गिरना और शेयर मार्केट का बढ़ना, ये दोनों जो है एक तरीके से कहें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। एक गिरेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा गिरेगा तो पहले वाला बढ़ेगा। जी
ऑलराइट, बिफोर वी गो एनी फर्दर वी आर नाउ जॉइंड बाय राज कॉलिंग अस ऑल द वे फ्रॉम बेंगलुरु। यस राज जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
मैडम मैं पूछना चाहता हूँ कि आईपीईएफ में जाते हैं शेयर तो दो दो साल तक उसका वापस आते नहीं है, क्यों, क्या बात है? काफी काफी दिनों से लोगों के शेयर ऐसे पड़े हैं, लाखों लोगों के ऐसे ही है, तो ये क्यों, ये निर्मला सीतारमण जी का ये नहीं है क्या फर्ज कि सबको अपनी?
जी जी
देखिए राज जी, जब कभी भी कोई शेयर या जो अनक्लेम्ड शेयर्स या अनक्लेम्ड डिविडेंड जो कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड में डाले जाते हैं, उसके बाद जो आवेदन होता है उस आवेदन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि केवाईसी की शर्तों को आप पूरा कर रहे हैं कि नहीं। आपकी पहचान जब तक साबित नहीं होती है तब तक आपको वो नहीं मिलता है। और वैसे भी आपको पता है कि एक तय समय के बाद ही वो शेयर या डिविडेंड जो कि अनक्लेम्ड है वो वहां पर ट्रांसफर किए जाते हैं। उस दौरान अगर किसी ने उसके ऊपर दावा नहीं किया और आईपीएफ में जाने के बाद दावा किया, उसकी पहचान साबित होने में अगर समय लगता है तो जिसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा विलंब होता हो, लेकिन इसके लिए जो है वो हेल्पलाइन है, वहां पे आप संपर्क करके आप अपनी जो आपकी शिकायत है वो कर सकते हैं।
लीला धर नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लीला जी स्वागत आपका मार्केट मंत्रा में, क्या सवाल है आपका?
नमस्कार सर।
नमस्कार
सर, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी बजट आया 1 तारीख में तो लोगों को बहुत उम्मीद थी कि रेलवे सेक्टर में काफी कुछ देखने के लिए मिलेगा, लेकिन रेलवे सेक्टर में जो पिछला बजट था उसको एज इट इज रख दिया गया है। तो अभी जिन लोगों के पास रेलवे के शेयर हैं काफी और वो काफी डाउनफॉल में जा चुके हैं।
ओके लीला जी, देखिए रेलवे के आवंटन को लेकर के जो आपने सवाल उठाया है, अगर आंकड़ों में देखें तो वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए वो खर्च कहाँ हो रहा है। खर्च अगर आप देखेंगे कि पटरियों का दोहरीकरण है या फिर जिसे कहा जाए कि नई पटरियां बिछानी है, उन सब चीजों के बजाय रेलवे के संरक्षण के ऊपर, रेलवे में सुरक्षा के ऊपर ज्यादा खर्च किया जा रहा है। और रेलवे की बेहतरी के लिए जब नए नए ट्रेन इंट्रोड्यूस हो रहे हों, नए ट्रेन शुरू किए जा रहे हों, उस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। आपने ये भी याद रखना है कि रेलवे के दोहरीकरण या नए रेलवे लाइन के बिछाने के मामले में काफी प्रगति हमने पिछले 10 साल में देखी है, 15 सालों में देखी है, और उस पर खर्च जो है जिसको हम लोग पूंजीगत खर्च कहते हैं वो लगातार बढ़ाया जाता रहा है। इस बार अगर 2.55 लाख करोड़ के उस पर टिका हुआ है तो उसको आप उसकी सबहेड को देखिए। और आपका जो मूल सवाल है कि उसके शेयरों का क्या होगा, ये देखिए शेयरों में गिरावट और शेयरों में बढ़त कई तथ्य निर्भर करते हैं। केवल एक हम कहें कि बजट की वजह से वो शेयर बढ़ जाएंगे या बजट की वजह से वो शेयर घट जाएंगे, अभी आप परिस्थितियां देखिए पूरे बाजार में गिरावट है, तो एक एक खास सेक्टर के शेयरों को लेकर के आप अगर कहें कि वो एक बजट का है तो बजट एक कारण हो सकता है लेकिन वही कारण नहीं हो सकता।
इनफैक्ट अ लॉट ऑफ वैकेंसीज इन द रेलवेज इज बीइंग नाउ फिल्ड एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट एंड इज बीइंग स्पेंट ऑन सेफ्टी मैकेनिज्म। यू ऑल्सो ट्राइंग टू पेटेंट दैट्स द वन
कवच
कवच यस और मे बी वी हैव पेटेंटेड आई डोंट नो
इट्स अ प्रोसेस इज ऑन
या राइट ऑलराइट फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन वी आर नाउ जॉइंड बाय रमेश कॉलिंग अस फ्रॉम दिल्ली। जी रमेश जी अपना सवाल पूछिए। जी
हेलो।
हाँ जी जी सवाल पूछिए।
जी नमस्ते जी।
नमस्ते जी।
जी मैम मेरे को शेयर के बारे में कुछ सवाल पूछना है।
हाँ पूछिए जी।
कि हमने अभी करीबन चार महीना पहले कुछ कैनरा बैंक का शेयर लिया है,
लेकिन हम
जी बताएं अपने सवाल क्या है।
ओके
जी सर, वो अभी क्या करना सर, नीचे जा रहा है, उसका प्राइस काफी नीचे चला गया है, तो अभी उसको रखना चाहिए और हमें बेचना चाहिए?
जी आप जैसा अभी लालिमा जी बता रही थी, स्टॉक और कंपनी स्पेसिफिक हम बात नहीं करते हैं कि आप पूरे बैंकिंग सेक्टर के बारे में हम जरूर बात कर पाएंगे, किसी भी खास शेयर के बारे में बात नहीं करेंगे। और बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करें तो बैंकिंग सेक्टर एक एवरग्रीन सेक्टर कह सकते हैं, भारत की परिस्थितियों को देखते हो?
देखिए, बैंकिंग या वित्तीय क्षेत्र जो है वो आने वाले समय में उसमें काफी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। उसकी वजह यह है कि जब ब्याज दरें कम की गई हैं तो कर्ज देने की रफ्तार बढ़ने का अनुमान है, और जब कर्ज देने की रफ्तार बढ़ेगी तो बैंकों की कमाई का रास्ता भी बनेगा।
बिल्कुल, और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लालिमा हम बताना चाहेंगे, हालांकि दो कॉलर सतानु और सतपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बेहद महत्वपूर्ण चर्चा उन पहले कर लें फिर आपके पास आते हैं। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई के गवर्नर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी सबसे संबंधित बातें की हैं, देश की मॉनिटरी पॉलिसी, देश की फिस्कल पॉलिसी को लेकर। और वित्त मंत्री ने कहा है कि बोथ पॉलिसीज आर इन टैंडम एंड वुड बेनिफिट द इकोनॉमी। आप स्वयं शिशिर वहां थे, क्या सार रहा इस बैठक का?
तीन बातें हैं। सबसे पहली चीज की अगर आप 1 तारीख को बजट का ऐलान देखें जिसमें आयकर की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए, और उसकी वजह से जो करीब 1 लाख करोड़ रुपए का जो पैसा है वो आम लोगों के हाथ में, जो करदाता उनके हाथ में आने की उम्मीद है। और इसके साथ साथ 7 तारीख को जब मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई जिसमें नीतिगत ब्याज दर में कमी की गई, तो आज की चर्चा का सार ये था कि वित्तीय जो राजकोषीय नीति है और मौद्रिक नीति यानी कि फिस्कल और मॉनिटरी का जो कॉम्बिनेशन होगा वो अर्थव्यवस्था में तेजी लाएगा, और उसके हमें शुरुआती संकेत दिखने लगे हैं। तो पहली बात तो ये थी। दूसरा जो मुद्दा आया था वो ये था कि रुपए को लेकर के, कि रुपए में जिस तरह की गिरावट हो रही है उसको लेकर के क्या कुछ किया जा सकता है। तो देखिए, उसमें बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जो हमारे काबू में नहीं है, खासतौर पे अगर हम अमेरिका की व्यापार नीति की बात करें या वैश्विक परिस्थितियों की बात करें, वो हमारे बस में नहीं है। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा यह है कि जब रुपया कमजोर होगा तो बहुत सारे महंगाई के ऐसे तथ्य हैं जिसको हम लोग इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी कि वो सामान जो कि हम बाहर से मंगाते हैं, चाहे वो कच्चा सामान हो या तैयार सामान हो, उससे हमारे हेडलाइन इन्फ्लेशन पर जो मुख्य महंगाई दर उस पर क्या असर पड़ेगा। तो इसमें एक तथ्य जो आज रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि हम इन चीजों को लेकर के बिल्कुल सचेत हैं, हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम इनके ऊपर काबू पाया जा सके। और उन्होंने एक आंकड़ा भी दिया कि अगर 5% रुपया या कोई भी नकदी जो कमजोर होती है तो महंगाई दर में 0.2 की उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो अभी के समय में जरूर इसको लेकर के चिंता चल रही है, क्योंकि जनवरी के ही महीने में लगभग 2% तक रुपया कमजोर हो चुका है, और अगर आप नवंबर से देखें तो लगभग 4-4.5% हो चुका है। तो ऐसे में उसका क्या असर पड़ सकता है, इसके ऊपर भी चर्चा की गई। तो ये तीन बड़े मुद्दे थे जो कि आज की बातचीत में सामने रखे।
एंड द इकोनॉमिक सर्वे ऑल्सो मेंशन्ड दैट द एनपीएस आर नाउ टू एक्चुअली रियली It's very, very less now.
देखिए, बैंकों की वित्तीय स्थिति को लेकर के आज की बैठक का मुद्दा नहीं था।
आज नहीं, पर मैं इसके अलावा
बिल्कुल
इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहा कि एनपीएस अब बहुत कम रह गए।
बैंकों की स्थिति को
they're healthy, they're healthy
और condition. अगर आप देखें कि अप्रैल से दिसंबर तक की जो 9 महीने का समय है, बैंकों के जो अभी तक के नतीजे जो जारी किए हैं उन्होंने काफी अच्छे रहे हैं, उनका मुनाफा काफी बढ़ा है। और इसी वजह से अभी जो पहला एक सवाल था एक खास बैंक को लेकर के, इसीलिए मैंने कहा कि बैंकों की स्थिति अच्छी है, थोड़े उतार चढ़ाव आएंगे, उसको लेकर के विचलित नहीं होना है। एक लंबे समय के लिए पैसा और धैर्य दोनों का निवेश करिए, फायदा होगा।
बिल्कुल, और लगातार आप पहले भी कहते रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त है, 3-5 साल अगर आप निवेश कर सकते हैं तो वो हमेशा ही बेहतर रहेगा। अतानु शाह हमारे रेगुलर लिसनर हैं, फोन भी करते रहते हैं। जी, सवाल पूछे अतानु जी।
नमस्कार, गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग
सर, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज constructionary and what is expansionary monetary policy, and another is how and where our consumer investing and how our government maintain inflation. Thank you, sir.
Mr. Saha, inflation is more in the domain of monetary policy, which is under the RBI. So whenever there is a inflation is high, the monetary policy committee under RBI governor, they takes a step to check the inflation. And when the inflation is down, they always try to cut the interest rate. So this is the basic formula which we think. On the supply side, it is the role of the government where they try to reduce some taxes, especially the indirect taxes. And please remember, it is not part of the government alone. I mean, whether the central or the state, it is a combination of that we know as the GST Council. And also, when the goods are not in enough quantity available according to the demand, then the import is encouraged. And we have seen in terms of pulses and the edible oil, we have seen a lot of measures to encourage the import. So this is how they manage the inflation.
इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो contraction की बात कर रहे हैं और inflationary monetary policy की बात कर रहे हैं कि जब interest rate बढ़ाया जाता है तो उसको हम contraction कहते हैं और जब interest rate घटाया जाता है यानी बाजार में ज्यादा पैसे छोड़े जाते हैं तो उनको inflationary monetary policy कहते हैं।
इसको अगर आप सरल शब्दों में कहें तो बाजार में देखिए महंगाई की एक बड़ी अच्छी परिभाषा है जो कि हम लोग अर्थशास्त्र के छात्र होने के नाते पढ़ते हैं. वो कहते हैं कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स. तो जब आपको बाजार में महंगाई पे नियंत्रण करना है तो रुपए की आपूर्ति यानी कि सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा. और जब आपको बाजार में विकास के ऊपर ज्यादा ध्यान देना तो आपको एक्सपेंशन यानी कि विस्तार पे जाना होगा. तो ये जो पूरी नीति है जो रिजर्व बैंक के अगर प्रीएम्बल देखेंगे जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में साफ लिखा है कि रिजर्व बैंक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी महंगाई के ऊपर नजर रखना और नियंत्रण रखना है
और साथ ही ग्रोथ को भी बिल्कुल अनदेखा नहीं करना है.
वो तो मौद्रिक नीति कर भी नहीं सकता.
जी
राइट एंड इट्स अ टाइट रोप वॉक. ऑलराइट वी आर नाउ जॉइंड बाय सतपाल सिंह जी हु इज कॉलिंग अस फ्रॉम दिल्ली. जी सतपाल जी सवाल पूछिए अपना. जी
हेलो.
हेलो जी
नमस्कार मैम.
नमस्कार जी जी
सतपाल सिंह बोल रहा हूँ दिल्ली से.
जी जी
मेरा ये कहना है कि अब मैं बजट भी आ चुका है और रेपो रेट भी कम हो गए हैं तो आगे का मार्केट कैसा रहेगा. क्या निफ्टी 50 जो है 26,000 से पार कर पाएगा. कितना समय लगेगा. धन्यवाद.
सतपाल जी कोई समय सीमा तो बताना मुश्किल है लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि इस समय बाजार केवल घरेलू तथ्यों से नहीं चल रहा है. हमारी वैश्विक जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही ज्यादा उसमें उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं और खासतौर पे अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद जिस तरीके से व्यापार और आर्थिक नीतियां अपनाई जा रही उसका भी असर पड़ रहा है. एक और बात ध्यान रखिए सतपाल जी कि यूरोप में मंदी जैसे सुगबुगाहट सुनाई दे रही है. ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है. तो इन सब के बीच में अगर आप देख रहे हैं कि भारतीय शेयर बाजार बजट के बाद उस तरीके से नहीं बढ़ा या जब हम रिजर्व बैंक के रेपो रेट की बात करते हैं उसमें उसके बाद जब बाजार नहीं बढ़ा तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वैश्विक परिस्थितियां आपके घरेलू जो कारक हैं उसको उस तरीके से समर्थन और साथ नहीं दे रहे हैं जो बाजार को बढ़ाने में मदद करें.
आर आर एक्सपोर्ट्स आल्सो बीइंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इन यूरोप एंड यूएस एट द मोमेंट.
वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड द सर्विसेज एक्सपोर्ट्स आर स्लाइटली इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इन यूरोप एंड एट द सेम टाइम वी नीड टू रिमेंबर दैट व्हेन द रूपी इज डिप्रिसिएटेड एवरी टाइम इट इज सेड दैट एक्सपोर्टर्स आर गोइंग टू गेट ऑल द बेनिफिट्स बट प्लीज रिमेंबर that many of the items which are used to manufacture a good which is to be exported are imported first. So when they are imported, then your bill will be higher because of the depreciation of rupee and that will also affect your export competitiveness. So exporter will get the benefit because of the depreciation of rupee only to one extent. Do not expect that when the rupee is getting depreciated by 3% or 4%, your exporters will feel more and more happier. That should not be the concept.
Right, well explained. All right, we are now joined by Yogesh Sharma calling us from Delhi. Ji Yogesh ji, apna sawal puchhiye.
Ji, namaskar.
Namaskar.
Mera sawal ye hai ki ye jo ek to repo rate hai, ye repo rate ka loan ki daron mein aur khas taur pe interest rate se iska kya taluq rehta hai? Aur ek sawal jo mujhe pareshan kar raha tha wo ye tha ki jo inflation, ye mere observation hai ki jo inflation ka rate rehta hai, wo government jo byaj dar tay karti hai FD ke liye ya पॉपुलर मेन स्ट्रीम इंस्ट्रूमेंट के लिए वो अक्सर सेम रहता है. तो क्या इन्फ्लेशन से एफडी के जो सरकारी बैंक के एफडी होती है उसके रेट का भी कुछ ताल्लुक रहता है आपस में.
तीन तथ्य इन्होंने उठाए हैं. पहला मैं पीछे से शुरू करता हूँ यानी कोई इन्होंने आखिरी कहा. देखिए सरकार फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट तय नहीं करती है. वो बैंकों का अपना मसला है. सरकार तय करती है स्मॉल सेविंग स्कीम्स पे जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं या फिर पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम है या सुकन्या समृद्धि है या पब्लिक प्रोविडेंट फंड है. इनके ऊपर ब्याज दर जो है वो तय की जाती है और वो उसी मेच्योरिटी की उसी टेन्योर के जो बॉन्ड्स होते हैं जिसको हम लोग जीसेक कहते हैं उस पर मिलने वाले ब्याज के हिसाब से तय किया जाता है और हर तीन महीने पे ये समीक्षा होती है. तो अब जो समीक्षा होनी है वो मार्च के अंतिम सप्ताह में होनी है जो कि अप्रैल जून तिमाही के लिए लागू होगी. तो ये इनका तीसरा जो सवाल का हिस्सा था. दूसरा इनका जो पक्ष है कि जो रेपो रेट और ब्याज दर की देखिए एक सिस्टम हमारे यहाँ है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्किंग बेस्ड लेंडिंग रेट यानी कि कई बैंकों को अपने जो ब्याज दर है उसको तय करने के लिए कोई एक एक्सटर्नल बेंचमार्क बनाना पड़ता है, और वो बेंचमार्क ज्यादातर बैंकों में रेपो रेट है। अब जब रेपो रेट में बदलाव होगा तो आपके जो कर्ज हैं उसके ऊपर भी ब्याज दरों में बदलाव होगा। अब जितने भी पर्सनल लोन या छोटे लोन्स होते हैं या एमएसएमई के लोन है उसके लिए ये सिस्टम जो है वो मैंडेटरी है, वो अनिवार्य है। तो अब जब रेपो रेट घटा है तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो हमारे कर्ज हैं उसके ऊपर भी कमी आएगी, लेकिन इसके लिए हमको ये भी ध्यान में रखना है कि जो हमारी जमा है उस पर भी ब्याज दर में कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बैंकों के पास जब तक सस्ता पैसा रहेगा नहीं वो कर्ज सस्ता नहीं कर सकते हैं। तो रेपो रेट के घटने को केवल हम कर्ज से जोड़े वो ठीक नहीं है, हमें जमा से भी जोड़ना होगा।
एंड यूजुअली द एफडी, द इंटरेस्ट ऑन एफडी इज ऑलमोस्ट सिमिलर इन ऑल बैंक्स, शेयर वी डोंट फाइंड टू मच ऑफ अ डिफरेंस, मे बी 0.25 दैट्स बिकॉज़ ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस
वन, एंड द सेकंड इज द कॉस्ट ऑफ asset is almost similar. I mean, if you go to deposit some money, most of the banks, most of the public sector banks are having a gap of say 10 bips or what we call as a 10 basis point or 5 basis point. That is the reason. In the private sector, in the private sector bank, you may find higher interest rate, but there are certain number of terms and conditions to be fulfilled to avail that higher interest rate. So right. Whenever you are going for say higher interest rate of 6% or 6.5%, please read the fine print carefully. Otherwise, you are not going to get the benefit of that higher rate.
All right. Yes, sir.
रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 642 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 28 यौन 51 सिस्टम खरीदने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ करार किया है। यौन 51 एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल अग्नि नियंत्रण प्रणाली है जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और थर्मल इमेजिंग के जरिए अपने लक्ष्यों को चिन्हित करती है। इस करार से अगले 3 वर्षों के दौरान रोजगार के प्रचुर अवसर उपलब्ध होंगे जिससे एमएसएमई सेक्टर को फायदा होगा। साथ ही रक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे सरकार के आत्मनिर्भरता के प्रयासों को भी काफी बल मिलेगा। रत्नाकर हैं मुंबई से हमारे साथ। रत्नाकर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछ लें।
हेलो, गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग।
मेरे 2 छोटे सवाल है। एक है कि रेपो रेट 0.25 से कम होने के शेयर मार्केट में कौन से जो शेयर सेक्टर है वो इफेक्ट हो जाएगा, उसमें क्या बदलाव हो सकता है। और दूसरा सवाल है कि अभी जो नेक्स्ट वीक में इनकम टैक्स का जो बिल आने वाला है पार्लियामेंट में, उसमें क्या रह सकता है, उसमें किस तरह के प्रावधान हो सकते हैं। थैंक यू।
मुझे लगता है पहले यहाँ भी मुझे दूसरा सवाल पहले लेना पड़ेगा। देखिए, कल कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है और नए बिल का अगर मैं बजट के भाषण से जो हिस्सा उठाऊं उसमें बहुत साफ लिखा गया है कि इसको सरल करना है, इसको जितना आसान बनाना है, क्योंकि हमारा जो अभी इनकम टैक्स का कानून है वो 1961 का कानून है और 6 दशक हो चुके हैं, और इन 6 दशक में उनमें इतनी बार बदलाव किया जा चुका है कि उसकी जो मूल आत्मा है वो कहीं खो चुकी है। तो अब उसको सरल, सहज, आसान बनाने की एक कोशिश में नया कानून आने वाला है। थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा उसके खास प्रावधान को लेकर के। जो आपका पहला सवाल था कि कौन से क्षेत्र हैं जहां पर रेपो रेट में कमी से फर्क पड़ेगा, मेरे हिसाब से 2 क्षेत्रों पर आपको नजर रखनी चाहिए। एक आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर है जिसमें काफी अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है, और दूसरा अगर हम देखेंगे तो एफएमसीजी सेक्टर, खासतौर पर जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स हैं उनमें आप नजर रख सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर तो खैर है ही।
Alright, we have now Pankaj and he's calling us from Ghaziabad. जी पंकज जी, आप हैं लाइन पर?
हाँ जी, मैं बिल्कुल लाइन पर हूँ। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं फर्स्ट टाइम कॉलर हूँ और मार्केट में बहुत अभी मेरा रुझान आना शुरू हुआ है, तो मेरे 2 सवाल हैं।
जी जी।
मार्केट में मैं उतना टेक्निकल नहीं हूँ कि सुबह शाम या महीने 15 दिन में ये देख पाऊँ कि किसमें कितनी कमाई हो रही है और क्या खरीदूं क्या बेचूं। तो मैं 52 ईयर सैलरीड हूं और अभी मैं लोन फ्री हुआ हूं अपनी लाइफ में, तो मेरे पास जितनी भी ईएमआई का बफर है वो मैं लगाने में ये राय लेना चाहता हूं आपकी कि रियल एस्टेट में लगा नहीं पाऊंगा, एफडी में डाल के छोड़ दूं, या मार्केट में अगर मुझे लगाना है तो वो कौन सी इंडस्ट्री है जिनको मैं लॉन्ग रन के लिए सोचूं लगा के छोड़ दूं। इसका एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि जिस भी म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट मार्केट में लगाऊंगा तो ये लोग एक मंथली कुछ एक्सपेंसेस लेते हैं अपने फंड मैनेजर के नाम पे, तो मुझे वो प्रोडक्ट सजेस्ट कीजिए जिसमें कि मेरी कॉस्ट टू फंड मैनेजर कम हो।
ठीक है,
शायद मैं अपना सवाल कह पाया।
जी जी जी,
बिल्कुल। पंकज जी, म्यूचुअल फंड को लेकर के हमारी सलाह होगी कि रविवार को जब म्यूचुअल फंड का विशेष कार्यक्रम होता है मार्केट मंत्रा में, उसमें आप सवाल पूछेंगे तो आपको बिल्कुल ही क्लियर मिल पाएगा। लेकिन मैं संक्षिप्त में इतना ही कह सकता हूं कि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जहां पर जो कॉस्ट होता है वो काफी कम होता है, और खासतौर पर अगर आप NFO यानी कि न्यू फंड ऑफरिंग में जब पहली बार वो बाजार में आ रहे हैं वहां लगाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरा, जो आपका पहला सवाल था कि शेयर बाजार में हमने ताजा ताजा शुरू किया है और EMI का बफर आपके पास है, तो 52 वर्ष की उम्र है, आप बुजुर्गों से लगभग 8 वर्ष दूर हैं, तो मेरी आपकी सलाह यही होगी कि आप FMCG, फार्मास्यूटिकल्स और फाइनेंशियल सेक्टर, ये 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें आप लगाएं, थोड़ा समय दें, 3 से 5 साल का समय दें तो आपके लिए बेहतर होगा। हम ये नहीं कहते हैं कि आपको बहुत फायदा होगा, हम ये नहीं कहेंगे आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि बाजार को टाइमिंग करना कोई बहुत आसान काम नहीं है। 3 से 5 साल का समय दीजिएगा तो उम्मीद है कि आपको नुकसान या निराशा नहीं होगी।
All right, we have now, we are now joined by Sukhdev calling from Delhi. जी सुखदेव जी, अपना सवाल पूछिए।
गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा।
गुड इवनिंग जी जी।
मैडम, आई वांट टू नो वन थिंग, व्हाट इज SDF एंड व्हाट इज MDF, व्हिच द RBI हैज सेड, मुझे जरा सरल भाषा में समझा दीजिए, SDF एंड MDF.
SDF और MDF, वैसे एब्रिविएशन में बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। शिशिर, आपको बहुत पॉपुलर एब्रिविएशन है किसी चीज का?
मेरे लिए भी थोड़ा सा समझना मुश्किल है इसको, शायद हो सकता है उन्होंने कहीं सुना होगा, मैं इसके बारे में अभी नहीं बता पाऊंगा, कोई गलत जानकारी मुझे देना।
जी जी जी।
All right, let's take a look at the U.S. stocks now. All 3 major U.S. stock indices finished steeply lower in a broad sell-off that accelerated after a report that U.S. President Donald Trump will shortly announce new tariffs. The indices all notched losses on the week. The much-anticipated employment report showed the U.S. added 1,43,000 jobs in January, 53.4% fewer than December's upwardly revised 3,07,000. Earlier, a survey showed U.S. consumer sentiment dropped unexpectedly in February to a 7-month low and inflation expectations rocketed, with households seeing inflation over the next year surging to 4.3%, the highest since November 2023. The Dow Jones Industrial Average fell 444.23 points or 0.99% to 44,303 points, and the S&P 500 lost 57.58 points or 0.95%, and the Nasdaq Composite lost 268.59 points or 1.36%. All the 3 indices were down this week, with the Dow breaking a 3-week streak of gains and ending 0.54% lower. The S&P fell 0.24%, while the Nasdaq was down 0.53%. All 11 S&P 500 sectors traded lower on Friday, with consumer discretionary leading losses with a roughly 2.5% fall.
एक जो सवाल अभी आया था STF को लेकर के, दरअसल ये रिवर्स रेपो का नया नाम है। रिवर्स, पहले हमारे पास रेपो और रिवर्स रेपो हुआ करता था। रेपो में जिस दर पर रिजर्व बैंक बैंकों को कर्ज देता, और रिवर्स रेपो था जिसमें बैंक अपना पैसा रिजर्व बैंक के पास रखते हैं। अब इस रिवर्स रेपो का नाम है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जो दरअसल बैंक अपना पैसा जो है रिजर्व बैंक के पास रखते हैं और कोशिश होती है कि बाजार से अतिरिक्त नकदी जो है वो कैसे समेटी जाए।
और CRR को शायद MDF,
कैश रिजर्व जो रेशियो है वो MDF का एक फॉर्म होता है। कैश रिजर्व रेशियो यानी कि जमा में जो बढ़ोतरी होती है उसका एक हिस्सा रिजर्व बैंक के पास जमा कराना होता है। थोड़ी विलंब हुई, क्षमा चाहेंगे,
कोई बात नहीं, लेकिन वक्त भी कह रहा है कि अभी कार्यक्रम हमें खत्म करना पड़ेगा। शिशिर, आप आए
ऑयल पे,
इसके पहले एक स्टोरी आपके पास
है। या लेट्स टेक अ लुक एट द ऑयल प्राइसेस क्विकली। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स सेटल एट $74.66 अ बैरल, अप 0.5%, व्हाइल US West Texas Intermediate क्रूड फिनिश्ड एट $70 अ बैरल, अप 0.6%। नाउ टाइम टू रैप अप हर्ष।
यस, बहुत-बहुत धन्यवाद शिशिर।
थैंक यू।
अंत में हेडलाइंस एक बार फिर।
यस सर्टेनली, यस फ्रेंड्स, लेट्स वाइंड अप द शो, बट बिफोर दैट a look at the headlines. Well, benchmark domestic indices decline amid cautious sentiment last week following the RBI monetary policy. Defense Ministry signs a contract with Bharat Electronics Limited for procurement of 28 EON 51 systems for the Indian Navy. And Brent crude prices settle at $74.66 a barrel, up 0.5% last week. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Harsh Ranjan, and our expert Shishir Sinha, signing off. Namaskar. See you tomorrow, same time. Market.